समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से, स्वयं तू संभल ले ऐसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान
खुशियों की खान।
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का करने समस्या का समाधान। हमारे साथ हैं एक खास मेहमान कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने बहुत ही सुंदर सी प्रार्थना की थी कि प्रभु, संसार में बहुत ज्यादा भूकंप तो आते ही रहते हैं, क्या कभी ऐसा भूकंप नहीं आ सकता जिसमें सभी जाति या सभी मजहब सभी संप्रदाय की जो दीवारें हैं जो एक दूसरे को दूर करती हैं वो दीवारें गिर जाएं और सभी एक हो जाएं। सचमुच ये कामना हर एक के मन में रहती है कि आपस में जो प्रेम है, एकता है, भाईचारा है, मानव धर्म है, वो सचमुच संसार में चारों तरफ होना चाहिए, तो माहौल पूरी तरह परिवर्तित हो जाएगा। और इसी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है कि सभी तक मानवता का धर्म पहुंचे, सभी आपस में हिलमिल करके रहें। और इसीलिए इस मंच पर भी आप लगातार हमारे जो अतिथियों को देखते हैं वो अलग अलग धर्मों से हैं और साथ ही इसी मानव धर्म का परिचय देते रहते हैं, यही संदेश देते रहते हैं कि हमारी एकता, हमारा प्यार या फिर हमारी एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना ही श्रेष्ठ भावना है जो संसार को श्रेष्ठ बना सकती है। आज हमारे मंच पर डॉक्टर हिना मुकादम जी हैं जो कि ग्लोबल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में सीनियर क्लिनिकल एसोसिएट के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से पिछले 9 साल से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे योग का गहन अनुभव भी करती हैं और दूसरों को योग सिखाती भी हैं। आइए डॉक्टर हिना जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर हिना, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक अलग बैकग्राउंड, मुस्लिम बैकग्राउंड में जन्म लेना, वहाँ पलना बढ़ना और उसके पश्चात ब्रह्मा कुमारीज की ओर आना, तो क्या ऐसा खास लगा आपको ब्रह्मा कुमारीज में जिसने आपको खींचा, आपके कदम इस ओर चल पड़े?
हम मुंबई से बिलोंग करते हैं और हम मुंबई के BSCS हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे
जी।
और उसी दौरान वहाँ पर जब भी आप जाते हो तो ये ब्रह्मा कुमारीज का हॉस्पिटल है तो वो कोर्स चालू करते हैं और हमारा भी ऐसे ही कोर्स चालू हुआ, लेकिन कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। तब तक कुछ ऐसा हुआ, 2008 में हमारे पिताजी बीमार पड़ गए, उनको एक क्लॉट हो गया लेग में जो कि लंग्स तक गया और कार्डियक अरेस्ट हुआ और वो कोमा में गए। तो जब वो कोमा में चले गए तो हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे पिता के साथ ऐसे क्यों हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर ऐसा क्यों है ना। और इसी समय ऐसा था कि जब हमारी छोटी बहन ने जन्म लिया था तो उनको हाइड्रोकेफेलिस था जो ब्रेन में पानी होता है, तो जब वो 9 दिन की थी जब उनका जन्म हुआ था तो उनको एक शंट डाला था। अभी तक लगभग उसके 7 ऑपरेशन हुए हैं। क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो हम देखते थे कि जब बच्चा जन्मता है किसी के घर में बहुत खुशियाँ होती है और किसी के घर में हम देखते हैं कि बच्चा जन्मते ही 5 ऑपरेशन उसके फाइल पे लिखे जाते हैं। तो मन में हमेशा ये प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है, क्या क्या कर्म है ये। तो जब पापा बीमार पड़े तो उनको स्टिमुलेशन थेरेपीज देने लगे हम, BSCS में, तो उसी दौरान मेडिटेशन म्यूज़िक उनके कान में लगाया था। और जब हम देखते थे कि ये मेडिटेशन म्यूज़िक उनके कान में लगाते थे तो उनके चेहरे पर एक शांति थी, तब हमने सोचा ये कौन है आखिर। और फिर हम इनके बारे में पढ़ने लगे, ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, एंड देन आई केम अक्रॉस कर्मा फिलॉसफी। तो जब मैं कर्मा फिलॉसफी को पढ़ा हमने, तो हमको लगा कि ठीक है, इस आत्मा को कोई ना कोई कर्मों का हिसाब किताब अभी आत्मा चुकतू कर रही है और यही पापा के साथ हो रहा है। तो ये एक एंट्री पॉइंट था स्पिरिचुअलिटी में हमारे लिए, जबकि हम उसके पहले इसमें बिलीव नहीं करते थे कुछ। और उसी दौरान जैसे ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सारे विंग्स है, मेडिकल विंग्स, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस था, तो हम उस कॉन्फ्रेंस में माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में आए थे। और जब हम यहाँ पे आए थे तो हमने देखा कि हम 750 डॉक्टर्स थे वो टाइम, 2009 है हमको याद है, और हम देख रहे थे कि सब कुछ इतने आसानी से यहाँ पर हो रहा था, सब इतने स्माइलिंग फेसेस वाले थे। और हम सोच रहे थे कि घर में जब दावत होती है और 15-20 लोग भी आते हैं तो इतनी हलचल होती है कि सब कुछ ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये देख के हमको अट्रैक्शन हुआ बहुत कि आखिर कौन सी शक्ति है यहाँ पर जो सब कुछ इतना स्मूथ चलता है। और फिर हम बहुत कुछ पढ़ने लगे और फिर एक्सपीरियंस करने लगे, क्योंकि फिर हमने भी मेडिटेशन करना चालू किया। क्योंकि जब कोई बीमार होता है तो सब तरह से लोग कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। तो जैसे कि हम बिलीव करते हैं कि अगर हम कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें उस आत्मा को, उस रूह को, तो फिर वो हीलिंग पावर चालू होती है। और हमने हमारे पापा के लिए वो चालू किया और देन हमको खुद को अच्छा लगा कि जैसे खुदा की शक्ति हमारे साथ काम कर रही है अभी और हम उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार है। वरना हम तो एकदम गिव अप कर दिया था हमने लाइफ, क्योंकि आई वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। एंड जो कंसल्टेंट हमारे पापा को देख रहे थे, हमने उनसे कहा कि अगर हमारे पापा ठीक नहीं हुए आई विल लूज फेथ इन गॉड। ऐसे हमने बहुत ज़ोर से चिल्लाया था हॉस्पिटल में, हमको अभी भी याद है। और लेकिन वो फेथ बहुत पक्का हो गया उसके बाद। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था।
बहुत सुंदर। तो ये जो खास योग की आप प्रैक्टिस करते थे, किस प्रकार की आपको फीलिंग हुई? क्योंकि आपने लिखा भी था कि बहुत ही गहरे योग के सुंदर अनुभव आपकी शुरुआत से ही होने लगे, तो किस प्रकार की फीलिंग थी मेडिटेशन में?
जब हम योग में बैठते थे, पहले तो हम घर पे ही बैठते थे, हमको पता नहीं था, लेकिन किसी ने हमको कहा कि जो मॉर्निंग का समय होता है वो बहुत अच्छा होता है। और मुस्लिम धर्म में भी जैसे कि आप जानते होंगे 5 times प्रेयर्स करते हैं, तो जो फजर की नमाज़ होती है वो पहली नमाज़ होती है और तभी आप देखेंगे वातावरण बहुत शांत होता है। इसके पहले एक और नमाज होती है जिसको कहते हैं ताज्जुद की नमाज़, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हमारे पिता भी पढ़ते थे वो नमाज़। तो वो समय बहुत पावरफुल होता है एंड वो मैंने बिलीव किया उस चीज़ में। तो हम जब उस नमाज़ के लिए भी उठते हैं तो वही टाइम पर हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करने लगे और ऐसा लगा कि बॉडी से पूरा डिटैचमेंट होता है। और बाकी जब वो मेडिटेशन करते हैं तो दिन भर जो चैलेंजेस आते थे तो उसको फेस करने के लिए हम तैयार रहते थे। वरना पहले तो हम जैसे कि टूट चुके थे और रोते थे, हर डॉक्टर कुछ भी बोलता था तो हमको रोना आता था, लेकिन वो एक्सपीरियंस दिन भर में दिखता था कि वो जो शक्ति कम हो रही थी वो कहीं ना कहीं चार्ज होती जा रही थी। तो ये एक्सपीरियंसेस हमने
बहुत मदद
बहुत मदद।
तो पिताजी की फिर स्थिति में क्या सुधार हुआ?
नहीं, उनको हाइपोक्सिक ब्रेन डैमेज हो गया था। हाँ। तो वो कोमा स्टेट में थे और 2 साल वो घर पे ही थे और हमने एक नर्स रखा था घर पे। हमारा एक बेडरूम पूरा नर्सिंग होम जैसी हो गया था, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ। उनको एक पैक ट्यूब था जिनसे उसकी फीडिंग थी, एक ट्रेकियोस्टोमी था, तो वो सब चालू था उनका। और 2 साल के बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। जब हाइपोक्सिक डैमेज हो जाता है तो कोई गुंजाइश नहीं होती कि पेशेंट वापस आएगा, वेजिटेटिव स्टेट में चले गए थे वो। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, कर्मा फिलॉसफी को जानने के बाद, हम एक्सेप्ट करने लगे चीज़ों को, जबकि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे पहले, हम रिजेक्ट कर रहे थे उसको कि ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन हमारे में वो एक्सेप्टेंस आ गया।
मतलब ये एक शक्ति प्रदान कर देता है मेडिटेशन और आध्यात्म की हम सिचुएशन को फेस कर पाए। अदरवाइज जैसे आप कह रहे थे कि व्यक्ति टूट सा जाता है, बिखर जाता है और फिर जिंदगी में कई बार कुछ लोग संभल भी नहीं पाते हैं। तो आपकी इस जो सुंदर स्थिति थी, क्या इसका प्रभाव परिवार वालों पर भी और अन्य पे भी पड़ा कि आप कैसे इतने स्टेबल हैं, कैसे इतने शांत हैं जबकि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है?
और एक्चुअली हम एक ओनली डॉक्टर है फैमिली में, तो हमको पता था कि अगर हम टूट गए तो ये सब टूट जाएंगे और इन सब का भरोसा था हम पर। लेकिन हमने देखा कि सब घुल मिलकर पापा का ध्यान दे रहे थे, जबकि उनको तो ऐसी आश थी कि पापा ठीक होंगे, क्योंकि हर फैमिली मेंबर को ये आश होती है कि वो ठीक होंगे, लेकिन हम क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड से थे हमको पता था कि ठीक नहीं होंगे। लेकिन वातावरण चेंज होने लगा घर में, क्योंकि हम उस वाइब्रेशन को, जैसे हम खुदा से वो वाइब्रेशन लेते थे तो हम पूरे घर में वो उसको फैलाते थे कि इस घर का एक एक व्यक्ति खुश रहे, एक एक व्यक्ति प्यार से रहे, तो वो वातावरण घर में बन चुका था। और ऐसे ही बहुत सारी मदद आगे भी लाइफ में मिली। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, तो रिसेंटली हमारे फैमिली में दो लोग बीमार हुए लास्ट ईयर, और बहुत सीरियस बीमारी हुई, और उस चीज़ को मुझे भी फैमिली को डिक्लेयर करना था, लेकिन अब मैं प्रिपेयर्ड थी, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को तोड़ देती है। लेकिन वो शक्ति मिली कि कैसे डिक्लेयर करना है, और उन लोगों को मॉर्निंग में जब 4 o'clock हम मेडिटेशन में बैठते थे, हम उनको यहाँ से वाइब्रेशंस भेजते थे, एक हीलिंग एनर्जी भेजते थे, और हम देखते थे कि उनके रिपोर्ट्स ठीक होते जा रहे हैं। जबकि जो हमारी नीस हैं वो 10 year old थी, तो उनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हुए, लेकिन हमने देखा कि वो इतनी खुश रहती थी, इतनी जेलिंग थी। और जैसे कि जब हम फर्स्ट टाइम उसको मिले थे तो वो ठीक नहीं थी, जबकि और हमारा भाई भी हमसे कह रहा था कि हीना ये कैसे फेस करेगी इसको, एंड हमने कहा कि नहीं करेगी। और जब नेक्स्ट टाइम हम मिले तो हम दोनों शॉक थे कि ये कोई चमत्कार है। और हमारी 10 year old नीज भी आज मेडिटेशन करती है रोज़, 10 minutes मॉर्निंग में, 10 minutes इवनिंग में। तो ये सारे चेंजेस फैमिली में भी आए।
जी, मतलब एक बहुत ही सुंदर पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है और चीज़ें बिल्कुल बदल सी जाती
जी
हैं। जैसे मैंने एक शुरुआत की थी कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शुरुआत करता है लेकिन फिर अपोजिशन भी होता है। मान लीजिए आप किसी एक विशेष स्थान पे गए, तो कई बार मित्र संबंधी हों या आसपास वाले हों, उनके मन में कई प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ, हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में ये मान्यताएं हैं, कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? तो क्या कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आए?
सिर्फ अपनी कम्युनिटी से नहीं, लेकिन दूसरे जो मित्र संबंधी हैं उनको भी ऐसे लगने लगा कि ये कहाँ चली गई, ऐसे लगने लगा। लेकिन एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे चलते हैं तो हम और फर्म मुस्लिम बन जाते हैं या हिंदू बन जाते हैं, जो भी हम कहेंगे, कि हम एक्चुअली फर्म बन जाते हैं। हम जो भी करते हैं हम उसको सोच समझ कर करते हैं, नहीं तो पहले ऐसे होता है कि हम सिर्फ जो हमको सिखाया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं,
बिल्कुल
लेकिन अब हमको समझ से हम करते हैं उस चीज़ों को। तो वही लोगों ने चेंजेस देखा हम में ना, कि इतना इनके लाइफ में होने के बाद भी इतने स्टेबल हैं, और पापा के जाने के बाद जो हमारे जीवन में परिस्थिति आई, जो फाइनेंशियल आए क्राइसिस, वो सबको हमने फेस किया था, और उसके बाद भी हमने बहुत पढ़ाई की और खुद अपनी सैलरी पर अर्न करते हुए पढ़ाई की, तो वो देखते थे। और हमारे टीचर्स भी पहले उनको लगा कि ये क्या है, लेकिन फिर उन्होंने वो इतने खुश है आज हमको देख के,
जी।
और वो सोचते हैं कि देखो ये कितने इंडिपेंडेंट है अभी, तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया।
मतलब आध्यात्म प्रत्यक्ष लाभ देता है, वो लोगों को दिखाई देता है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं कि हम यदि इस धर्म के हैं, इस संप्रदाय के हैं, इस जाति के हैं या इस चीज को फॉलो करते हैं, तो हम बस इसी चीज को करेंगे और किसी स्थान की ओर नहीं देखेंगे, भले वहां बहुत कुछ प्राप्तियां हों या फिर आध्यात्म की सुंदर परिभाषा मिलती हो। आप क्या कहेंगे इस मन से कि ब्रह्मा कुमारी इसमें लोग क्यों आए? यदि वो किसी भी जाति या किसी बिलीफ को मानते हैं तो क्या प्राप्ति होगी यहाँ?
जैसे हम जिस हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं, उस हॉस्पिटल में हर मज़हब के लोग आते हैं, और वो खुद जब वहाँ पे आते हैं, हमारे पास कैंप्स होते हैं, डायबिटिक कैंप्स होते हैं और दूसरे अलग अलग कैंप्स होते हैं, उसमें हम काफ़ी मुस्लिम से भी मिले,
जी
और वो खुद यहाँ पर आकर फील करते हैं कि इधर इतनी शांति है ना। आज हम मस्जिद में जाते हैं या गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम क्यों जाते हैं, चर्च में जाते हैं, हमको शांति चाहिए। और है ना, जब हम इस संस्था में आए तो हमको वो शांति मिली यहाँ पर, जो कि हमको वहाँ पर नहीं मिल रही थी शायद। एक्चुअली जब हम जाते हैं बस उस समय ही वो शांति रहती है, और फिर जब घर आ जाते हैं वापस तो शांति चली जाती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब मुंबई जैसे शहर में हम रहते हैं तो वहाँ की चकाचौंध और वहाँ का जो आकर्षण है वो कैसे खींच लेता है आपको। हमारा ट्रैवलिंग में ही 2-3 घंटा चला जाता है। इंसान जब अपने घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए, तो वो क्यों कमाने के लिए निकलता है कि घर पे पैसे आए, खुशी आए, लेकिन वो खुशी सब कुछ चली जाती है, वो बीमारी घर पे आती है, स्ट्रेस घर पे आता है, टेंशन घर पे आता है। लेकिन जब हम इस लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं तो हम समझते हैं कि ओके, ये करते हुए हमको खुश रहना है, ये करते हुए हमको पीसफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि हम जब मंदिर में जाएंगे या जब हम मस्जिद में जाएंगे तभी ही हम शांत है और बाकी दिन पे हम अशांत है, तो ये समझ आती है और ये हमारे जीवन में चेंजेस लाता है। क्योंकि ऐसे नहीं है ना कि सिर्फ आप नमाज के लिए जानमाज पे खड़े हो, या आप गुरुद्वार में गए हो, या आप चर्च में गए हो और जीजस के सामने आपने हाथ जोड़ के खड़े हैं तब आपको शांति मिलेगी उस स्थान पर। शांति तो हमारा स्वधर्म है, तो वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। तो वो इस संस्था में आके हमने समझा और उसको हमने अपने जीवन में लाया।
जी, वो शांति दिखाई देती है आपके चेहरे से भी, और सचमुच इसी शांति की तलाश तो सभी को है, चाहे वो कोई भी प्रयास जैसा आपने कहा वो कर रहे हैं। कई लोग ये मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज कोई धर्म है, अलग धर्म है, या फिर ये कन्वर्ट करते हैं दूसरे धर्म वालों को। आपने यहाँ आकर के क्या देखा, क्या पाया?
जी, जब हम BSCS में थे और हमारा 7 days कोर्स इन लोगों ने चालू किया, तो हमको भी लगा ये आत्मा परमात्मा ये सब हिंदू लोग हैं, और हमारा बिल्कुल मन नहीं लगता था उसमें, एकदम रिलक्टेंट थे हम उसको सुनने के लिए। और वो बैठते थे हमारे साथ और चित्र दिखाते थे। देखिए, मुस्लिम्स में भी देख, अगर आत्मा और परमात्मा वर्ड ही एक्चुअली ऐसा लगता है ये तो हिंदू लोग हैं, हमारे लिए वो सब हिंदू लगता है हमको, लेकिन ये तो सिर्फ शब्द है ना, ये तो हिंदी के शब्द है, लेकिन सबका पिता एक है ना। हम सब जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम ब्लड डोनेशन कैंप्स करते तो हमारे खून भी एक है, तो
बिल्कुल
हम सब उसकी संतान है। भले कोई धर्म वाले कहते हैं कि वो हमारा पिता है, कोई माता के रूप में उसको प्रे करते हैं, सूफिज्म में उसको पत्नी मानते हैं, और
जी,
मुस्लिम्स में कहते हैं कि वो मालिक है और हम
मालिक है।
बंदे हैं, तो हम किसी भी रिलेशनशिप से उसको याद कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि ये कोई धर्म नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन कोई कोई रिलीजन्स इतने रिजिड होते हैं कि दे डोंट ओपन द डोर टू गो आउट, और है ना कि कुछ जानने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी के प्रेशर्स भी होते हैं। तो ये बिलीफ को हमको यहीं पर तोड़ना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है। हमें कोई फोर्स नहीं था कि कोई ब्रह्मा कुमारीज वाले हमें खींच रहे हैं कि आ जाओ हमारे पास, कोई फोर्स नहीं था। हम जब माउंट आबू में आए थे पहली बार, तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई पूजा नहीं करता, कोई टीका नहीं लगाता, कोई देवी देवताओं के चित्र नहीं है यहाँ पर, ऐसे कोई ये कोई मंदिर नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे सब सिर्फ मेडिटेशन करते और इतने खुश रहते हैं, तो और एक लाइफस्टाइल को जीते हैं, और कुछ ना कुछ गॉडली थॉट्स होती है, वर्जन्स होते हैं, वो सुनते हैं मॉर्निंग में और उसको अपने जीवन में लाते हैं। तो ये कोई धर्म तो है ही नहीं। तो लेकिन लोग जब करीब आते हैं ना तब इसको जानते हैं। दूर से बैठकर अगर हम इसके बारे में सुने तो हमको लगता है कि ये हिंदू ही है और
जी,
ये एक धर्म है, लेकिन ये एक धर्म है ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब दूर
वरना
नहीं लेकिन पास आए।
हम भी एक मुस्लिम होने के नाते क्यों आते नहीं तो इसमें,
जी, मतलब दूर से देखने की जरूरत नहीं है, नजदीक आएंगे तो
नज़दीक
लगेगा
आके
कि कितना अपनापन
एक्सपीरियंस
है।
एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं ना हमारे हॉस्पिटल में भी मुस्लिम्स आते हैं कैंप्स में, और वो एक्सपीरियंस करके जाते हैं, वो इतने खुश होते हैं, और हमको देखकर भी जब हमसे बात करते हैं वो लोग, तो कभी उन्होंने हमसे कोई ऐसी बात नहीं की,
यहाँ धर्म परिवर्तन की तो कोई बात नहीं
कोई
है।
नहीं, कोई हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करता। और ऐसे भी नहीं है कि आपको सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहन के ही घूमने हैं,
जी
ये सब भी कोई नहीं है, क्योंकि बाहर से जब दुनिया देखती है तो उनको ऐसे लगता है, लेकिन 5% लोग जो सरेंडर्ड होते हैं कोई भी संस्था में, तो वो लोग उस वो कपड़े
वस्त्र को
वस्त्र में
पहनते
पहन के
हैं।
घूमते हैं,
जी,
बाकी तो 95% लोग जो ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं वो तो अपने घर में रहकर इसको फॉलो करते हैं।
बिल्कुल, और
तो
जैसी
ये
बात आपने शायद कही थी वो वाली बात है कि कोई मुस्लिम है तो बहुत ही पक्का मुस्लिम बन जाता है, कोई
जी
क्रिश्चियन है तो बहुत पक्की तरह से अपने
जी
धर्म को फॉलो
जी
करता है, मतलब जो चीजें हैं मूल
जी
बातें हैं उन्हें वो अपने जीवन में
जी
लेकर के
क्योंकि
आते
बहुत
हैं।
अच्छी समझ आती है, जैसे कि अभी रमजान चल रहा है ना,
जी
तो हम
जी
फास्ट रखते हैं रमजान में, तो मुस्लिम धर्म में भी सिखाया जाता है कि जब आप फूड से जो फास्ट करते हो, एट द सेम टाइम कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई अपवित्र थॉट नहीं आनी चाहिए अपने मन में, नहीं आनी
जी
चाहिए। आप
जी
किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी से बुरी तरह से बात नहीं कर सकते, आप इनफैक्ट आप टीवी भी नहीं देखते पूरा 1 month। रमज़ान में हर मुस्लिम के घर में टीवी बंद होता है ना, इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सबको पता है टीवी से क्या मिलता है हमको आज।
जी
तो जब इस चीज़ को हम जानते हैं, तो वो हम सिर्फ 1 month क्यों फॉलो करें, हम तो पूरा ईयर फॉलो कर सकते हैं उसको, है ना,
जी, पूरे जीवन यदि ऐसे ही
पूरी
किया जाए
जीवन।
तो सचमुच की जीवन कितना सुंदर हो
हाँ,
जाएगा।
और मुस्लिम्स बहुत खुश होते हैं रमज़ान का, आप फेस्टिवल देखेंगे तो सबके चेहरों पे एक नूर होता है, एक
जी
खुशी होती है, और वो जो इबादत करते हैं उससे कितनी खुशी मिलती है। तो
जी
वो इबादत को हम कंटिन्यू करें उसी लगन से, क्यों
जी
एक ही महीना श्रावण मास है और क्यों एक ही महीना रमज़ान है, क्यों ना
जी
पूरा जिंदगी हो, ऐसे हम सोचते।
नहीं, ये बहुत ही सुंदर सी बात है और सचमुच विचारणीय बात भी है कि क्यों थोड़े समय के लिए, चाहे किसी भी धर्म में हो, लेकिन ये जो हमारी परंपराएं बनी हुई हैं, वो परंपराएं सचमुच यदि जीवन में उतर करके आ जाएं, तो पूरा जीवन ही, जो आपने कहा कि एक नूर जो चेहरे पे रहता है या जो खुशी रहती है माहौल में, जो अपनापन रहता है, वही हमेशा रहेगा। एक
जी
खास बात, कई बार लोग ये कहते हैं कि यंग एज में ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, राइट? जो धर्म है या भक्ति है या फिर खुदा का जो ध्यान है या ईश्वर का ध्यान है, वो तो आप बुढ़ापे में कर सकते हैं। आप भी बिल्कुल यंग हैं, यंग एज में आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी हैं। क्या कहेंगे इस पे, आपकी क्या मान्यता है, यंग एज में करें या बुढ़ापे में करें?
एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी एक जीवन जीने का तरीका है, तो वो हम क्यों, इसके लिए कोई एज नहीं है कि इसको छोटेपन से चालू करें या बूढ़े होके चालू करें। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई एज की आवश्यकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे पास चिल्ड्रन कैंप्स था और वहाँ पर कितने 10 से 12 साल के बच्चे भी आए थे, तो वो अपना जीवन अभी से इस स्पिरिचुअलिटी में फॉलो कर रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि हम अपनी नीस को भी कुछ फोर्स नहीं करते, हम उसको सिर्फ सिखाते हैं कि बच्चों यू हैव टू बी हैप्पी, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आएंगी आपको खुश रहना है। और उसको खुद को ऐसा लगा और वो खुद मेडिटेशन करने लगी। इनफैक्ट जब हमारे सामने खाने की प्लेट आती है ना, तो हमको बचपन से सिखाया जाता था कि प्रेयर पढ़ के खुदा को याद करके और फिर भोजन स्वीकार करना है। तो उसी तरह से हम उस चीज़ में सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड की हमने, कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस उस फूड की प्लेट में डाल के खाना, और हमारी 10-year-old नीज अभी से वो करती है। तो
अच्छा
मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई एज की ज़रूरत है।
मतलब इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए, और सचमुच ये जीवन को बहुत सुंदर और सरल कर देता है। तो आज इस मन से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे सभी उन भाई बहनों को जो अलग अलग धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, और साथ ही जो अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं?
हम यही कहेंगे कि अपने अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड कर ले हम, और बाहर जाके दुनिया को देखे, है ना। एक स्पिरिचुअलिटी एक मार्ग है, एक जीवन जीने का तरीका है जैसे हमने कहा, और इसको दूर से ना देख के हम इन लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे विंग्स हैं, इतने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं यहाँ पर। कभी ना कभी अगर इनको मौका मिले तो ये हेडक्वार्टर्स आ सकते हैं या कोई ना कोई सेंटर्स पर जा सकते हैं, और इनको खुद को फील होगा कि कितनी शांति है यहाँ पर, कितनी शक्ति है यहाँ पर। और जो गॉडली वर्जन्स हम यहाँ पर सुनते हैं, जो थॉट्स हम सुनते हैं, उसको हम जीवन में लाए, तो डेफिनेटली आई वुड से कि सबने आके एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि हमने भी एक्सपीरियंस करके ही हम आगे बढ़े। जब तक हमको भी एक्सपीरियंस नहीं था, हम भी बहुत रिलक्टेंट थे ना इसको देखने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको हम भी इनवाइट करते हैं, लेकिन वो भी सोचते हैं कि अरे दूसरी संस्था भी है, हम तो ये धर्म है, हम क्यों आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी का धर्म नहीं तोड़ा जाता। ये बहुत क्लैरिटी से हम बोलना चाहेंगे कि किसी का धर्म नहीं तोड़ा जाता यहाँ पर। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को समझने, इस वर्ड को समझने की बात है जो लोग नहीं समझ पाते कभी कभार।
जी, मतलब सबको सुंदर और सादर निमंत्रण है कि एक बार नजदीक आए और इस कार्य को अवश्य देखें।
जी
डॉक्टर हिना, यहाँ आने के लिए और अपने सुंदर अनुभवों को हमारे साथ बांटने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
मित्रों, सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना, किसी ने कहा कि मैं जिंदगी भर खुदा को ढूंढता रहा, कभी मंदिर में, कभी मस्जिद में, कभी गुरुद्वारे में, कभी चर्च में, लेकिन एक फकीर ने बहुत ही प्यार से मुझे कहा कि खुदा खोजने से नहीं, खो जाने से मिलते हैं। और सचमुच हमें खो जाना होगा उसके प्रेम में, हमें खो जाना होगा एक ऐसी मानसिकता में जिस मानसिकता में सात्विकता है, जिस मानसिकता में एक ब्रॉडनेस है, जैसे डॉक्टर हिना भी कह रही थी। यदि हम एक दीवार खड़ा करके रखते हैं तो शायद हम उस नूर तक नहीं पहुंच पाते, खुदा तक नहीं पहुंच पाते, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते। यदि हम सच्चे मन से इन सारी दीवारों को दूर करके उस तक पहुंचना चाहें, तो निश्चित रूप से हम उस तक पहुंच भी पाएंगे। और जिस मानव धर्म की बात मैं शुरुआत में कह रहा था, उस मानव धर्म को हम सारे संसार में ला पाएंगे। कामना तो हम सबकी यही रहती है कि आपस में वही प्रेम, एकता, भाईचारा और शांति हो, अपने लिए भी, समाज के लिए भी, संसार के लिए भी। और ये तभी हो पाएगा जब अध्यात्म जीवन में आता है, क्योंकि अध्यात्म हमें एक समत्व दृष्टि प्रदान करता है कि चाहे कोई अलग अलग धर्म से जुड़े हैं, लेकिन हैं तो सभी एक ईश्वर, एक अल्लाह की संतान। तो क्यों ना ऐसी दृष्टि को अपनाएं, मानवता के धर्म को अपनाएं और समाज को श्रेष्ठ, सुंदर, स्वर्ग, बहिष्ट तुल्य बनाएं। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान, समाधान।